ऐसे आनंदित रहेंगे, आपकी हंग भक्ति बढ़ेंगे, आपका दिल उभरता चला जाएगा। कुछ दिनों के बाद हे परमात्मा, आज तेरी शरण में नहीं होते तो कति नाश हो गया था बात का। पहले तो इतना ज्ञान हो जाएगा कि ये भक्ति नहीं थी इस पृथ्वी पे, दूसरा ज्ञान ये होगा कि ये आज जो सुख हो रहे हैं, जो प्रोटेक्शन हमारे हो रहे हैं, ये नहीं हो सकते थे किसी सूरत में भी। तो आप स्याणे हो जाते कि हमने झोपड़ी भी ना डाल रखी थी, मस्त हुए बैठे थे, मकान लेंटर का डाल लिया तो कितनी सुरक्षा होगी। पहले आपकी भक्ति, हमारी भक्ति ऐसी थी जैसे कोई वैसे ही काल्पनिक महल बनाए बैठे थे, और अब वास्तविक लेंटर डल चुका है इस भक्ति का, प्रोटेक्शन का, परमात्मा की संरक्षण आपके ऊपर हो चुका है। अब क्या कहते हैं कबीर परमात्मा, हमने क्या मांगना है मालिक से, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा जावे। परमात्मा से इतना ही मांगना है कि दाता इतना दीजिए कि जिसमें कुटुंब समावे, कुटुंब समाना रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार के सदस्य, अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो जाए, इसको कहते हैं जिसमें कुटुंब समावे। अब मान लीजिए आपने लड़की की शादी करनी है, अब के करें, ऐसा गंदा समय आया हुआ है और ना जाने कितना खर्च हो जाए और चिंतित हो जाता है, लेकिन परमात्मा अपने पता भी नहीं लागन देगा जिस दिन वो टाइम नजदीक आवेगा। कहते हैं कल्पे कारण कौन क्या हुए तो कर सेवा निकाम, और कहते हैं मन इच्छा फल देवेगा जब पड़े धनी का काम। अब धनी का काम कब पड़ेगा, जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो और भगवान के चरणों में लगे हुए हृदय से सच ऊपरले मन से लगा रहे तो उसकी प्रोडक्शन नहीं होगा, और फिर एक्सीडेंट हो गया मान ले, आपको ये दिखा देगा परमात्मा कि मैं बचा क्यों कर मेरे मालिक, और सोना के मुंह से कला देगा कि मैं तेरी जान बची तो बची क्यों इस भयंकर एक्सीडेंट में। तो कमाल की बात है। तो उस दिन आपका समझ वो धनी का काम था, वहां धनी का काम आ गया कि जब पड़े धनी थे काम, वो मालिक की प्रोटेक्शन था, जीव के बस का नहीं था, वहां पर चाहे अरबपति हो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उसके गेल सेना हो, वो नहीं बच सकता, वो उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जैसे हिंदुस्तान का राष्ट्रपति यानी जैल सिंह जी जब पद से रिक्त हो गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था और आखिरी सांस तक वो बेचारे दुखी होकर ही प्राण त्याग कर गए थे। जब तक पिछले पुण्य चलते हैं तब तक तो ये प्राणी उसको भगवान ये काल देता है उनको ठाठम ठाठ, जब वो अक्षीण हो जाते हैं फिर पाप कर्मों का दौर होता, कोई प्रोटेक्शन नहीं। तो वहां धनी का काम था, धनी का सहयोग रहा नहीं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि कल्पे कारण कौन है कि क्यों चिंता करता, सारी अन्यो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आन दे जो होश है, आन दे फिर मेरे लेवल का काम, फिर दिखाऊंगा तेने कैसे प्रोटेक्शन करता हूं। तो कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, तू लगा रहे भगवान के चरणों में बिना किसी इच्छा के, आंख मीच कर लगा रहे, और मन इच्छा फल देवेगा जब पड़े धनी ते काम, धनी माने परमेश्वर ते जब काम पड़ेगा तेरे मन इच्छा फल देगा। तो ऐसे ही इतना साई दीजिए जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। एक समय की बात है, ये कबीर परमात्मा जैसे ये दास उन्हीं के द्वारा दी गया ये सत्य ज्ञान का ढंडोरा पीट रहा है, जन जन को बता रहा है, अब तो सुविधा ये होगी कि सब बहन बेटी भाई बुजुर्ग ये नौजवान बेटे बेटी सब शिक्षित हो गए और शास्त्रों का ज्ञान सामने हो गया, नहीं तो ये आज के गुरु भी इस दास के इसे दुश्मन बना देता आपको कि मुझे बोलने भी नहीं देता कोई। लेकिन उस परमात्मा ने ऐसे समय पर यह कृपा बख्शी है कि ये ऐसी स्थिति में ढूंढा, सारा ज्ञान दे दिया, दास को खजाना दे दिया, अगले बेटा खार खर कर समझा अपनी प्यारी आत्माओं को दास, और परमात्मा कहता मैं तेरे साथ रहूंगा। अब उस समय कबीर परमात्मा भी यही बातें दास बता रहा, यही कहा करते थे कि शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा जैसा तुम्हारे को बताया जा रहा है, लेकिन उस समय हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे और उसका नाजायज फायदा नकली गुरुओं ने उठाया, उसका भयंकर परिणाम अभी तक हमें भोगना पड़ रहा है कि वो गलत छुरी दे देगी हमारे को और उसकी दंत कथाएं बनकर लोकवेद बनकर हमारे हृदय रंग दिए गए। तो कबीर परमात्मा यही बताया करते थे जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों उनके दुश्मन हो गए। कबीर साहब हिंदुओं को कहा करते थे कि क्या कहते थे बोली, क्या कहते थे रे बोली सी बोली सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरवावे देखे तीना लग जाइया, और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटैया रे, बोली सी दुनिया। है तरह गजब हुई हो, कैसे जैसे गुड़िया ले जाकर गुड़गांव में आड़े तो अपने बेटे की बहू ने और उस और साथ में फिर पोता हो जा पोती, वह कहाँ ले जाती है, गुड़गांव में आड़ी पे, गुड़गांव में आड़ी पे, और फिर वहां अपने अपने इस धाम पर ले जाना, मतलब कोई श्याम जी पूजा श्याम जी बाल उतरवाएंगे, कोई बालाजी जागा तो बालाजी बतरवाएंगे, कोई झाड़ो जागा झाड़ो दबाल उतरवाएंगे, कोई सीता, यानी उन्होंने अपने अपने सेन खान कमान वाले धन देव पहले वाले लोगों ने उसे मूर्ख गुरुओं ने अटका रखे थे, और परमात्मा समझाया करता ना जानो, अरे बोली थी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरवावे दे कैसी ना लग दिया, बुढ़िया जागी वहां जाती है गुड़गामे वाली पे या बेरी वाली पे, और वो नाई बैठे पाओगे टूटी सी कैसी ले, उन्हें बेरा चार बाल काटने मिनट में, और बार 2 रुपया में कटे तो उड़ा 20 रुपये लिया कर, 20 रुपये लेते हैं, तो बुढ़िया कहेगी ले भाई नाई के बाल उतार दे, और जो उठाओगा क्योंकि उसने फटाफट चल जल्दी होती है ना, कि ये लाइन लग रही है 20 आगे हजारों के काटने आज, और वह उनका गिरे धीरे धीरे कि मेरे बेटे के पोते का कैसी ना लग जा, कच्चा छरता कच्चा कति नरम कर पोते का भाई क्या, अरे क्या अपना पत्ता अपना पोता अपना बेटा इतना प्यारा लग गया, कैसी लगने का भी डर, और फिर एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटाई यार है, बोली सी दुनिया इसे जुलम करके तुम अपने बच्चों की खैर चाहते हो, ऐसे पाप करके। अब परमात्मा यही कहा करते थे कि ये साधना तुम्हारी गलत है, तुम गलत साधना करे, एक ऐसे ही थोड़ा सा है तो ये सत्य ही, परंतु थोड़ी सी दूसरी से मिसाल है, पर ये दूंगा एग्जांपल थोड़ा सा। कहते हैं वहां गुड़गामे वाली माता के ऊपर ठेका उठता है, कई जगह हो गया ऐसे मंदिर जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक ठेकेदार ठेका ले लेता है, भाई मान ले वहां 2 लाख में ठेका उठ गया, ठेका मतलब जो भी पूजा वहां चढ़ेगी, पैसे आटा गुड़ जो कुछ भी वो कंट्रोल करेगा गवर्नमेंट, या वो कमेटी जिसके अंतर्गत वो मंदिर आता है वो 2 लाख रुपए ले लेगी उसके ठेकेदार पे, और जब उसमें 3 लाख का आ गया तो उसका घाटा रह गया, तो उसका एक बुढ़िया गई वहां पे, तो एक ने ठेका ले रखा था उसमें 50,000 का घाटा हो गया, और बुढ़िया पोती आखिरी दिन जब वो हिसाब शुभ कर चुके थे, वह बोली वो बोला ताई यहाँ के करना आई तू, बोला भाई पोते की कांच लग रहे है, बोला ताई गलत आ गई या तब देवी था कांच काट काट डी कोई ना, बोला 50,000 में हमारी काट रखी, या बोला चढ़ा नाली कोई ना तो काट नाली है गलत आएगी तो, अरे ये नो की नो बात दे सकते, ये गलत चीज लग रही होगी आपको, ये सत्य है, ये तो दोनों इसी बूंदा ब्रह्म माटी करेंगे, पहले तो गलत की भक्ति गलत साधना ठीक होगी, और फिर गदेर गदी बना कर छोड़ देंगे मूर्ख लोग, कुत्तेर कुतिया बनेंगे, इससे बूंदी दुर्गति और जीव की हो को ना, और फिर क्या करेंगे, देख कितनी अब हमें ये बातें याद आती हैं, और हम भी पहले इसी में प्रसन्न रहते थे, हमारी दादी लाया करती पकड़ कर जब माता धोकन के चैत में जनाया करते, और घर से बाहर निकाल के वह चलो इतना कराया करती, लोग नून कर दे गुड़गांव में का नामू, और उला गेर का वो कूड़े पड़े हुए वहीं पर बारने आ गए, 3 बार करके कुत्ते जब बाहर लेते हो गिरते गिरते, और 2-4 टीके ला देती आगे पाछे, चल होगी माता दोती जी। तो ऐसी साधनाएं हम कर रहे थे, पता लगा है परमात्मा है मेरे मालिक, फिर क्या करते हैं, कहते काचा पाका भोजन बना कर माता धोकने गई, तो माता का दिशा बना कर नोको कैसा ही बन जाता था, कोई कच्चा रहता पूरा कोई पक्का, बेरा था कुत्ते ने खाना वहां जाके, काचा पक्का भोजन बना कर माता धोकने गई, और उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता वो क्यों ना मर गई, अरे बोली सी दुनिया चार ईट ला रखी होती है इनका माता या माता, हमने भी डर लग गया करता करके, दूर कर जाइए भाई उसको, पूरा माता माता बना रखी। एक बेरा पटा रखा गजब वो सूर तो उसका मान बैठ रहे आराम ना डर लग गए और कुत्ते बैठे उसके ऊपर। अब क्योंकि अज्ञानता का डर होता है, ज्ञान होने से फिर डर नहीं रहता बल्कि निर्भयता आ जाती है। आगे क्या बताते हैं कि जीवित बाप गेला तो झगड़ा रखे। पिताजी जब जीवित होते हैं जब तो उसने रोटी भी समय पर नहीं दे पाते, छोटी छोटी बातों पर लड़े जाएंगे, मेरे तीन के गुना दिया था है? तो उसकी मेयर करे है मनवाने और रोटियां तो भी बुढ़ा तरसता रहे। और मरने के उपरांत उसके फूला न ठाए बोझ मरते जाने का गंगा में गिर कावेंगी। ये बताओ पिताजी प्यार क्यों डरते गिरवाओ वे वो बेकार रखा है उनके भय से डाल करते पिताजी की पूजा। फिर तो क्या कहते हैं कि जीवित बाप के लठम लठा मुए गंग पुतिया। और फिर आवे आसुज का महीना फिर कौआ बाप बनैया। अरे बोली सी दुनिया आसुज में फिर ये आते हैं श्राद्ध। फिर क्या कहेंगे वो मेरे जैसा जाएगा गुरु जी भाई भोजन बना आप बनाऊंगा क्यों अपना अच्छा छौक डाला अच्छा घी ठोका उसमें बढ़िया गच खीर बना और अच्छा हलवा अनु कहते थोड़ा सा ऊपर रख दो। ऊपर रख दिया अगर तेरा पिताजी आ गया कौवा बन गया ये लग गया ना भोग तेरे पिताजी के इनका फिर कौवा बाबू बना दिया हमारा बाप बना दिया इनका ये तेरा पिताजी है। अब ये बातें आज तो अच्छी लग रही हैं शुरू शुरू में सुना आदमी ने होकर बताए तो सारी ये उल्टी बात कहें थे दत्तरता पूछ जाए करें। तो अब ये धीरे धीरे हमें ज्ञान होता चला जाएगा जब ये बात निमड़ेगी। फिर क्या हुआ मुसलमानों को परमात्मा कहा करते थे नादानों सारे दिन तक रोजे रखे तीसों रोजे खून कर तो कैसे हो दीदारा। कहते हैं कि दिन में तो रोजे रखे और सांझ पड़ी तो मुर्गी मारी उस दरगाह में थरी होगी खुवारी। दिन में तो रोजा रखा व्रत रखा शाम ने बकरा काट कर खा लिया मुर्गी मार के उसकी सब्जी बना ली रतरा बुला यो यो के व्रत होया भाई। परमात्मा कहा करते कि उन महापुरुषों ने हजरत मोहम्मद जैसी पुण्य आत्मा उनके 180,000 दो सीधे उनके संपर्क में उनके अनुयायी हुए थे उन्होंने बीड़ी शराब महात्मा को छुया भी नहीं था और ब्याज भी नहीं लेते थे वो किसी से। ब्याज भी एक तुम्हें खून पीन जैसा काम होता है। ये हमने नहीं लेना चाहिए मदद करनी है किसी की वैसे कर दे। अब इस दास की के ऊपर कृपा है परमात्मा की और जो इन्होंने जिन्होंने अपना आत्मा कल्याण कराना है उन्होंने ये फैसला कर लिया। एक भक्त ने नाम लिया और उसने कहा जी ब्याज भी नहीं लेना है क्या मगा बिल्कुल नहीं लेना वही ब्याज डालिए ठीक है देना पड़ जाए दूसरी बात से पर लेना नहीं तुम देखो तो रजा मालिक की। एक और चीज होती है जैसे बैंक में कुछ जमा प्राप्त पैसे कराने पड़ गए वो तो कुछ भी दे वो हम ले नहीं रहे वो तो गवर्नमेंट का रूल है वो अलग चीज होती है। इस उद्देश्य से किसी गरीब पर जैसे किसी की लड़की की शादी हो या कोई विशेष काम अड़ गया हो और उस पर 5 रुपये सैकड़ा हो तो मजबूरी में लेगा बेचारा तो उसका खून पी रहे हैं रात में नींद नहीं आ उसको और उसको फरीसाई होकर दे दो आपके पैसे भी वापस आएंगे और कई महीना तक आपका एहसान करेगा क्योंकि आप निष्पक्ष भाव से परमात्मा को आश्रित रख के ये कर रहे हो दुख नहीं आओ। तो एक सेवक ने नाम लिया नाम लेने से पहले उसने जिक्र चला तो उसने कहा जी मैं तो बिजनेस ही मेरा यही है मैं तो ब्याज से ही धंधा करके अपना काम चला रहा हूँ लोगों को ब्याज देता हूँ 5 रुपये सैकड़ा क्षेत्र 2 रुपये सैकड़ा। मैं बोला वे फिर नाम दे सक मत ले जब तेरे पास इतना पैसा है कोई और धंधा कर ले कोई छोटा मोटा। तो उसने फैसला कर लिया कि जी आज के बाद मैं बिल्कुल ब्याज नहीं लूंगा और मतलब जिनके पास पैसे जा रहे हैं उन पर भी आज नहीं लूंगा ब्याज आज के बाद। जिनके पास मेरे पैसे हैं उनको कहूंगा मैं कोई ब्याज नहीं लूंगा मेरे पैसे दे दियो जब तुम्हारा काम सर ले जब दे दियो। ये होते हैं फैसले फिर देखा भगवान ने ठाठ किया उसके। तो जब हमारे पर ये प्रश्न होगा तो बात बनेगी ये प्रश्न जब होगा हम इसकी मर्यादा नहीं मांगी। तो कहने का भाव है कि कबीर साहब उनको कहा करते थे मुसलमानों को कि जिस ममड़ी का दूध पीवत हो और गरत दूध गरत बहु खाई और उसी को फिर तुम हलाल करत हो, लेकर करद कसाई। तेरा गजवदीश माँ का दूध पिया तुमने, गऊ का, गऊ माता के, जिसका हम दूध पीवे उसको माँ कहते हैं, और उस माँ को उसको उससे का दूध पिया, उससे का घी खार फिर लेकर, और उसी का फिर तुम कतल करत हो, लेकर करद कसाई। यह भी कोई बात हुई। और फिर मैं कह दिया तुम्हारे कोई नादान संतों, वर्तमान के जो मुसलमान संतों ने, वो उन महापुरुषों ने ऐसा कभी नहीं किया, ना गऊ मारी, कहते हैं मनी मोहम्मद ना बिस्मिल कीती, मोहम्मद ने नहीं गोश्त खाया, गऊ ना बिस्मिल कीती, एक बार कहा मनी मोहम्मद जाप ऐसी बीती। उस महापुरुष ने गाय नहीं मारी, सबक से मारी थी, सबक से जीवित कर दी थी परमात्मा ने आकर, हजरत मोहम्मद से वह गाय जीवित भी ना हुई थी, लेकिन औरों की दृष्टि में नहीं आए थे वो मालिक, हजरत मोहम्मद की इज्जत रख गए थे। तो हजरत मोहम्मद ने उसके बाद विश्वास हो गया था वो कबीर परमात्मा है जो कुछ है। तो उसके बाद इन मुसलमानों ने वो दिन मनाना शुरू कर दिया हजरत मोहम्मद के जाने के बाद, शरीर छोड़ जाने के काफी वर्षों के बाद, कि हमारे पीर ने, हमारे जो नबी ने गाय मारी थी और जीवित कर दी थी, इस दिन वो दिन मनाने लगे गऊ हलाल करके, और फिर जीवित होती कोई ना मार के गिर देते जंगल में, मांस भी नहीं खाते थे शुरू शुरू में। कि तो फिर बाद में लंबी कहानी इतनी ना सुना करके मैं अभी सिर्फ इतना ही कहूंगा कि क्या कहते थे कि एक तरफ तो बकरे को हलाल कर रहे हो, बकरा रो रहा है, और उधर से एक मुल्ला आवाज लगा रहा है मस्जिद में, हे भगवान, हे अल्लाह, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में भीष्ट में स्थान देना। कबीर साहब ने कहा करते नादानो, अगर तुम्हें ये दृढ़ विश्वास है कि ऐसे कलमा पढ़ देने से, गर्दन काट देने से ये बकरे की रूह, बकरे की आत्मा स्वर्ग चली गई, तो बकरों का नंबर भाई कोई ना आने दे, कोई नहीं आने देगा, अपने बच्चे ने पहले करे, पहले अपने ने कहा मेरा दर्द है गर्दन पहने, पक्का विश्वास हो जाएगा कि मृत्यु तो होनी है सबने मालूम, और ये पता लग जाए कि ऐसे हलाल कलमा पढ़ने और गर्दन कटने से परमात्मा मिल जाएगा, यानी स्वर्ग मिल जाएगा, तो किसी का नंबर नहीं आने दे, सबसे पहला दास नंबर लावे और अपने बड़का का पहला लावा हम, क्योंकि हम अपने बच्चों को ज्यादा सुखी करना चाहते हम, लेकिन नहीं, कहते ये तुम्हारी नादानी भूल है भाई। जय या रूप भिष्ट पठाई, तो कर तदबीर कबीला भाई। एक मुल्ला मस्जिद में कुके, एक पुकार है बोकार, और इनमें कौन स्वर्ग में जागा, हमने लगा धोखा, ना तो बकरे की रूह स्वर्ग में और ना इसको हलाल करने वाले ये नादान आत्मा स्वर्ग, इनको तो सीधा नरक मिलेगा, और ये अदला बदला होगा। आज ये बकरा काटा है जिस काजी ने, कभी ये बकरा तो काजी होगा, और ये काजी बकरा होगा, इसकी गर्दन ये काट देगा, ये बदला कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा। इस बात से कांत करते उनके धर्म भले की भाई तुम गलती ना करो, तुम्हारा बहुत मनुष्य जीवन बर्बाद हो रहा है, और वो दुश्मन हो गए कौन, जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई थी, वो गुरु लोग, और जनता इन गुरुओं के पीछे होती है बेचारी भोली भाली, तो कबीर साहब के दुश्मन बना दिए। तो इन्होंने सोचा, कबीर साहब को कई बार तो मारना चाहा, उबलते हुए तेल के सरसों के कढ़ाए में डाल दिया तो भी नहीं मरे, जेरे कुएं में डाल दिया तो भी नहीं मरे, और जाके एक बार शेख तकी ने, सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, उसने कबीर साहब को टुकड़े टुकड़े करवा दिया तलवार पे, और चलन लगे जब परमात्मा खड़े हो गए, कितने निशान भी नहीं था उनके शरीर का, वो कट गए थे, और ऐसे मारे थे जैसे रूई में तलवार जाए, वो मारने वाले गुंडे ने कही आदमी को ना, रूई रूई की तरह लग रही है, हम क्या करें, और परमात्मा खड़े होकर हंसे थे, भाई आ जाओ दूध पी के जाइए, शेख थकी नो क्यों जाए, और वो गुंडे तो भाग्य बेचारे जो ला थकराए पे, उनका तो पसीने आगे टट्टी निकल गई, एक हफ्ते मतलब परमात्मा गए, जब बुखार उतरा उनको जाके कहा भाई मेरे इनकी बात मत आया करो तुम, कहने का भाव ये है मेरा। तो अंत में उन्होंने देखा ये मारे से मर नहीं रहा, कांटे से कट नहीं रहा, और ज्ञान में ये हार हो ही नहीं सकती इसकी, लेकिन उनको तो मालूम था कि सच कह रहा है, लेकिन आम जनता को उन्होंने बहका ही रखा था। एक बार क्या सोचा उन्होंने, सबने मिलकर मुसलमान और हिंदुओं के गुरुओं ने, कि इसको ऐसी सतीथी कर दे यू आप भाग जाए यहां तक। क्या किया, झूठी चिट्ठियां डाल दी सबके पास, सब महा यानी संतों के पास के अपने शिष्यों को साथ लेकर आना। कबीर नीरू का पुत्र जुलाहा काशी का रहने वाला 3 दिन का भंडारा करेगा और साथ में लिख दिया कि दोहर देगा और असर भी रख के हर बार जो भोजन खाएगा जितनी बार भोजन पावेगा उतनी ही बार उसको एक दोहर दी जाए। दोहर दोहर होता आजकल ये बहुत बड़ा कंबड़ी या कंबल हो, पहले ऐसी दोहर होया करती थी सर्दी से बचने के लिए। और वो मोटे कपड़े की खद्दर की बनी हुई होती थी तो उसमें चिट्ठी में लिख दिया कि जो भोजन खाएगा ना पर हर बार जैसे 2 बार भोजन भंडारा खाया किसी ने तो दोनों बार एक एक दौर एक एक असर फी रोज देगा, जरूर देगा और सभी आना। अब जिसने दौर और असर फी देख ली वो तो डांक ठोक दी। कहते 18 लाख व्यक्ति उस निश्चित तिथि को आके इकट्ठे हो गए। कबीर साहेब और रविदास जी ज्यादातर इकट्ठे ही रहते थे क्योंकि कबीर साहेब ने रविदास जी ने कबीर साहब की महिमा का ज्ञान हो गया था कि तो भगवान है। फिर भी हमारे अंदर भूल सी पड़ती रहती है, कभी भगवान माने कभी निशान माने कभी संत मान के ऐसे ऐसे। तो भी उनका बहुत अच्छा लगाव था अपने परमात्मा कबीर साहब से रविदास जी का। रविदास जी सुबह सुबह घूमने के लिए गए टट्टी पानी जंगल पानी जाते हैं तो रास्ते में देखा बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। कल तो कुछ भी ना था, कमाल हो गया। रविदास जी ने पूछा भाई कैसे आए हो महात्मा, क्या हो रहा है? तो वो संत कहने लगे, वो गुरुओं के शिष्य और वो मेरे बहुत ज्यादा संत साधु आए हुए थे भक्त आत्मा, वो कहने लगे भाई काशी वाले तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, जोन सा आ रहा वही पूछ रहा है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अरे वो काशी वाला ये कबीर भंडारा दे रहा है कबीर साहब। और रविदास बोले कौन कबीर? अरे कौन कबीर? वो नीरू का पुत्र जुलाहा। नीरू का पुत्र जुलाहा? हाँ कहा। तो कबीरदास जी बोले कोई चिट्ठी पत्री है तुम्हारे पास? अरे हाँ देखो सब दिखाओ निकाल निकाल के। हाँ वो ऐसे नहीं आते बिना बुलाए किसी के। अब रविदास जी का किस कित की टट्टी होने जाते वापिस हो लिए। अरे तेरा बुलाओ ये जुलम कर दिया ना आज तो। कबीर रविदास जी वापस जब गए सीधे अपने कबीर साहब की झोंपड़ी पर कुटिया पर पहुंचे और उतरा हुआ चेहरा कहने लगे भगवान आज तो काशी छोड़नी पड़ेगी अपने। तो रविदास कबीर साहब बोले क्या बात होगी के भगवान के बताऊं, बस जुलम हो गया। वहां तो दुनिया खड़ी है, इतने इतने साधु संत आए हैं और आम व्यक्ति भी आए हैं कहते हैं और सबके पास चिट्ठी है, किसी ने झूठ बदमाशी कर दी अपने साथ, आपका नाम लिखा है आपके पिता का नाम लिखा है, पूरा विवरण दिया है कि 3 दिन का भंडारा होगा और असर फी और दोहर हर भोजन के उपरांत दीक्षणा दी जाएगी और दुनिया विवरण कितनी आ रही है परमात्मा। और तो कबीर साहब बोले भाई रविदास जी आ जा बैठ जा, दरवाजा बंद कर ले अंदर पे और आज दिन दिन का टाइम पास कर ले, आज रात अपने बच्चे लेकर निकल जाऊंगा मैं, आज तू बाहर ना निकलिए, बैठ जाए आप। अंदर से कुंडा ला लिया और बैठ गए। कबीर साहब बोले रविदास जी भगवान बदले आप सुनेंगे, हम तो उसी का आश्रित है, यानी हमें ये दृढ़ विश्वास दिलाना चाहते तो मेरे ऊपर इतना विश्वास कर लेना, फिर सच्ची लो लगाए रखना मेरे ऊपर, लेकिन रहना मेरी मर्यादा में। अब एक रूप तो बैठे हैं कबीर साहब रविदास जी के पास और अपना वो परमात्मा सूक्ष्म रूप बना के यानी दूसरे रूप में सतलोक पहुंचे। सतलोक पहुंचे वो परमात्मा और पहले टेलीफोन कर दिया था कि 9 लाख बैलों के ऊपर बना बनाया भोजन भेज दो, तैयार कर दो, मैं आ रहा हूं लेने के लिए सतलोक पर। अब सतलोक की आत्माएं बैल बनाई मालिक ने और वहां नौ जाने कितनी बैलों के ऊपर लाइन लग रही थी सतलोक में और उनके ऊपर अमृत आहार बनी बनाई जिलेबी लड्डू वहां पर बहुत मीठे बहुत सुंदर सतलोक की जो बनी हुई ये तेज पुंज की मिठाई, तेज पुंज के फल, तेज पुंज के अमृत, बरके बैलों में कई लाखों की संख्या में चार खड़ियों शंख। कबीर साहब बोले 9 लाख भेज दो मेरे साथ, 9 लाख बैल, बैलों के ऊपर बना बनाया आहार, दौर असरती मोहर यानी वो सब भरके लड्डू जलेबी कचौड़ी जो जो मांगे वो पहले उसके अंदर सुंदर आहार। और जाके काशी के चौपड़ के बाजार में नीचे सफेद बिस्तर बिछा दिए, ऊपर का सफेद तंबू तान दिए और उनके अंदर ये पूरियां की पाल जलेबियों की पूरा ढेर का ढेर लगा दिया। और 3 दिन तक इन्हों जैसे कती ताजी काट कर उबलती आकर ऐसी खाना बना रहा। और दुनिया उधर से अपना दूसरा रूप केशव नाम रख लिया अपना, और बंजारे का रूप बना के उस नगरी में जाकर तंबू तान दिए, टेंट लगा दिया बंदी छोड़ने। अब वहां के लोग पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, कहां से आए हो, तो वो बंजारे रूप में वो परमात्मा कहते हैं कि मैं उस, वो पूछते हैं क्या लगता है कबीर तेरा, बंजारा केशव बंजारे रूप में परमात्मा कहते हैं वो मेरा पगड़ी बदल यार है, वो मेरा पगड़ी बदल यार है कबीर। मेरे पास भी एक पत्र गया था कि छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। तेरे की उंगलियां ओठो दांतों तले उंगली दबावे समझदार व्यक्ति, रईस को तो छोटा सा भंडारा का जिसमें 18 लाख व्यक्ति एक बार भोजन पाएंगे, 18 लाख। अरे 1800 हो जाए जो मुश्किल हो जाए इंसान ने, वो 18 लाख एक बार अन्यों के है, ये तो छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। और देखे वहां भंडारा है परमात्मा, क्यों भाई जो जितना अच्छी मीठी जलेबी मिले, रसगुल्ले मिले, लड्डू मिले, वो तो गुण गावे कबीर कबीर हो रही, भाई धन है इस कबीर ने, कमाल कर दिया, बड़ा अच्छा भोजन दिया। उधर से क्या किया शेख तकी ने, शेख तकी एक धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी राजा का जो दिल्ली के बादशाह थे। एक चिट्ठी वहां भी डाल दी उन्होंने, किन्होंने तो उन बदमाशी करने वालों ने जो बेइज्जती करना चाहते उस परमेश्वर की, क्यों डाल दी कि सिकंदर लोधी कबीर परमात्मा को बहुत आदर की दृष्टि से देखते थे, उनको अपना गुरु बना लिया था हृदय से, ऊपरले मन तो धार्मिक गुरु बेशक बना रहा लेकिन हृदय से वो अपना गुरु बना चुके थे आत्मा से, क्योंकि उनका जलन का रोग ठीक कर दिया था कबीर साहब ने। उनके सामने कई ऐसे प्रमाण दे दिए थे जो मुर्दों को जीवित कर दिया था, तो सिकंदर लोधी के हृदय में उस परमेश्वर की विशेष जगह बनी हुई थी। तो शेख तकी ये चाव था कि सिकंदर लोधी के हृदय से ये गिर जावे कि ये शक्ति युक्त है और मेरी महिमा बनी रहे। इस अटकल में एक चिट्ठी वहां भी पहुंच गई, तो शेख तकी कहने लगा आपके गुरुदेव भंडारा करें, चलना है क्या। सिकंदर लोधी बोला जी जरूर चलेंगे वहां, तो तीर जी तो अब ये पत्र आया हमारे मालिक का, तो हम नहीं जाएंगे तुम्हारा जैसा नीत नहीं। उसी समय हादी हाथी पर बैठे और दिल्ली से बनारस की पर प्रस्थान कर दिया। साथ में शेख तकी के आज पता लगेगा इसको, इसके वो भी उसका कबीर का भाग गया होगा, झोंपड़ी छोड़ कर काशी में ढूंढा नहीं मिलेगा इसको, क्यों रोटी होंगी नहीं, दाने हैं नहीं उसके पास, कंगाल व्यक्ति कहां से इतना भोजन लाएगा। तो खुश होकर चल रहा है शेख तकी, बड़ा प्रसन्न था के साथ। अब वहां जाकर देखा वहां काशी के बाजार में, वहां देखा तो ये परमात्मा जय जयकार हो रही, मेला लगा हुआ, भंडारे चले, ठाठुम ठाठ दुनिया जय जयकार करे कबीर साहब की, जबान जबान पर चर्चा भी, ऐसा भोजन हमने नहीं खाया, धन है वो कबीर, कौन है वो कबीर, दर्शन कर दे एक बार। अब राम, अब सिकंदर लोधी कहते गदगद हो है, भगवान जी से परमात्मा आपने कौन हरा सके मेरे मालिक, कमाल कर दिया आपने, ऐसा भंडारा हमने कभी सोचा भी नहीं था। और शेख तकी की मां मरगी, वो जो नीचा दिखाना चाहता था परमेश्वर को, उसने देखा रहे तेरे की तो बहुत ज्यादा भंडारा हो रहा है, वो तो बैठ गया अपना गोड्या में मुंह देकर किया के बनी। उधर से शेख सिकंदर लोधी पहुंचा उस केशव बंजारे वाले टेंट में, जहाँ केशव रूप में परमात्मा एक अलग अलग टेंट में बैठा था, अलग तंबू में बैठा था। सिकंदर लोदी ने पूछा कि आप क्या लगते हो कबीर के, कबीर साहब के। केशव बंजारे ने कहा, कबीर साहब बैठे थे केशव बंजारे रूप में, दूसरा रूप बना के, कि वो मेरे पगड़ी बदली आ रहे कबीर साहब, और मेरे पास एक पत्र गया था कि एक भंडारा है 3 दिन का, छोटा सा कुछ सामान लेते आइएगा। केशव बंजारा बोला कि उनको क्या जरूरत है आने की, उनका दास जो बैठा। सिकंदर लोदी बोला कि कहा है प्रभु कि वो अपने कुटिया में विश्राम कर रहे हैं, उनको क्यों कष्ट दे दिया हमने, आ जाएंगे जब उनका दिल करेगा। सिकंदर लोदी बोला मैं नहीं रुक सकता, मैं तो दर्शन करूंगा उनके एक बार जाके, इतने दूर से आया हूं और दर्शन करूंगा। अपना वहीं पर हाथी पर बैठे बैठे कुटिया के पास जाकर उतर गए नीचे। सैकड़ों अंगरक्षक साथ थे। अब सिकंदर लोधी ने जाके दरवाजा खटखटाया और रविदास बोले जी वो तो यहां भी आगे दिखे। कबीर साहब बोले बोल ले मत, अब दरवाजा मत खोलना, बस थोड़ा सा समय और रहता है, इसने पास करके चलेंगे। इतने में फिर दरवाजा खटखटाया और आवाज दी कि दरवाजा खोलो परवरदिगार। कबीर साहब बोले कौन है भाई, आपका दास है सिकंदर लोदी, ए परमेश्वर इतनी दूर से आया हूं आपके दर्शनार्थ, अपने दास को दर्शन दे दो। कबीर साहब बोले भगवान हे राजन आज हम दरवाजा नहीं खोलूंगा, मैं मेरे तो नाक में दम हो चुका है, मैं गरीब व्यक्ति, मेरे पास शाम के खाने का मुश्किल से अन्न आहार होता है, आटा होता है, और मेरे साथ इन्होंने बदतमीजी कर दी है, झूठी चिट्ठियां डाल करके मेरे द्वार के ऊपर अरे लाखों व्यक्ति इकट्ठे कर दिए, भगवान मैं तो आज के बाद निकल जाऊंगा, आज रात रात काटूंगा, दिन दिन रात को मैं काशी में नहीं रहूंगा, अपने लेकर माता पिता मोह बोले बच्चों को, जो उन्होंने मुर्दे को जीवित करके अपने बच्चे रूप में साथ रखा हुआ था, कमाल और कमाली को, कहने लगे मैं तो भगवान आज रात न निकल जाऊंगा, ढूंढा नहीं पाऊंगा, इस नगरी की तरफ मुख करके नहीं सोऊंगा, ये तो बहुत उस्ताद आदमी है, मुझे जीने नहीं दे रहे। अब सिकंदर लोदी कहने लगा परमात्मा किसी और को बहकाइयो, आप हम आपकी बहका में नहीं आ सकता, ये दास आपका, ये परमात्मा हम जान चुके हैं आपको, मैं ये दास आपका समझ चुका है आपको, आप क्या चीज हो। तब एक नो बोला एक बार दर्शन दे दो, केवल दर्शन करना चाहता हूं। तब सिकंदर जब कबीर साहब ने कहा रविदास खोल दे कुवाड़ा ने, कुवाड़ खोल दे, चरणों में गिर गया, दंडवत प्रणाम किया, मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया, और कबीर साहब ने से कहा कि भगवान एक बार चल कर देखो तो आपने के रंग लगा रखा है, हे परमात्मा ऐसा भंडारा दुनिया जय जयकार कर रही है, और सब यूं कह रही है कि ऐसा भंडारा हमने कभी दुनिया में देखा नहीं, ऐसा आहार सुंदर, इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक जीवन में हमने नहीं खाया, और सब ये कह रहे हैं वो कौन है वो ऐसा ऐसा कबीर, उसके दर्शन तक करें एक बार जो ऐसा यजमान हमारा है, ए परमात्मा आपके दर्शन के लिए दुनिया तलफ रही है, एक बार दर्शन दे दो उन प्यारी आत्माओं को, उनका उद्धार हो जाएगा। जब ऐसे विनम्र भाव से आंखों में पानी भरी हुई सिकंदर लोधी का जब देखी परमात्मा ने तो स्वीकार कर ली उसकी याचना के चलो। अब जो ही बाहर निकले परमात्मा उस झोंपड़ी से बाहर आए तो आसमान से फूल बरसने लगे, सुगंधित फूल उस परमेश्वर के ऊपर, बोलो सतगुरुदेव की जय। और कबीरदास जी ऐसे चंवर कर रहा था श्रद्धा से, तो सिकंदर लोदी ने कहा कि रविदास भगत जी मुझे दे दो आज ये सेवा, चंवर मैं कर लूं अपने भगवान पे, आप तो रोज सेवा करते हो, आपका धन भाग ऐसे परमेश्वर की आपने सेवा मिली है। तो कबीर साहब को उस सिकंदर लोदी ने हाथी पर बिठाया, अपनी अंबारी जो अलमारी सी एक कमरा सा बना लेते थे हाथी के ऊपर बहुत सुंदर, और उसकी चारों खिड़कियों को ऊपर उठा दिया और चारों तरफ से गेट खोल के और परमात्मा को आगे बिठा दिया, और रविदास जी उसके साइड में नीचे पीछे और
सिकंदर लोधी कबीर साहब के बीच में, उन दोनों के बीच में बैठ के, और कबीर साहब के ऊपर सिकंदर लोधी चवर कर रहा है और चारों तरफ की अंबारी खुली है, सारी दुनिया देख रही है कि कौन है वो कबीर की, ये है कबीर जो बैठा हाथी के ऊपर और ये चवर कौन कर रहा है। तो सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह चवर कर रहे हैं इस कबीर परमात्मा पे, सारे मेले में घूम के, और जो भी देखे हुए इन्हों का धन्य हो भाई, धन है ऐसे संत ने, धन है ऐसे परमेश्वर तुल, ऐसा बढ़िया भोजन हमने कभी नहीं खाया, जय हो कबीर की, जय हो कबीर की, जय हो कबीर साहिब की, शुभ जो जयकार होने लग रही, और शेक तकी के तेल जैसा छींटे लगन लग रहे, पड़ा पड़ा रो रहा क्रमहीन इंसान, भगवान से टक्कर ले रहा है वो नादान आत्मा अपने परमात्मा के साथ। अब सारे मेले में घूम के और वहां पहुंच गए कहां, जहां केशव रूप में अपने ही दूसरे रूप में बैठा था परमेश्वर। एक हलकारा आया, एक व्यक्ति भेजा केशव वाले रूप ने कि एक परमात्मा को बुला लाओ यहां पर। तो हलकारा गया कि हे प्रवरदिगार, आपको आपका दोस्त केशव याद कर रहा है। हाथी से उतर कर सिकंदर लोधी, कबीर साहब, रविदास जी आकर के और वहां उस तंबू में प्रवेश किया, तो तंबू को खोल दिया गया चारों तरफ से, ऊपर को उठा दिया, एक स्टेज कबीर साहब की लगा दी, एक केशव की लगा दी, आसन लगा दिए, बहुत सुसंदित पाठ पटंबर बिछ गए, हीरे मोती लाल चारों तरफ इतनी सुंदर, और आठ पैर तक 24 घंटे केशव प्रसन्न करता है और कबीर साहब उतर देते हैं। केशव कहता है अपना दूसरे रूप में, हमारी अंधों की आंखें खोलने के लिए, केशव कहता परमात्मा आप इसे बढ़िया लोक ने सतलोक ने छोड़ के यहाँ क्यों आ गए, गंदे लोगों में, आप इनका भला चाहो, ये आपके साथ बुरा करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपको मारते हैं काटते हैं, हे परमात्मा आप क्यों दुख पा रहे हो, अपने लोक में चले जाओ। तब केशव कबीर साहब कहते हैं कि केशव तू नहीं जानता मेरे दुख ने, ये मेरे बच्चे हैं, ये शेख तभी तकी भी मेरी मेरी आत्मा है और ये सब प्यारी आत्मा मेरी आत्मा, ये काल ने इनके इनको भांग प्यार रखिया, झूठे मान बड़ाई किया एम की और साथ में ये नशा कर रखा झूठा सुख दे के, और मैं जानता हूं ये बालक इन पता नहीं ये मेरा जूत मारे हैं ना तो भी मुझे प्यारे लगे हैं, क्योंकि इनको ज्ञान को नहीं, ये नशे में है, जैसे किसी का बालक बिगड़ जा दारू पीवर, पिता उसने प्यार दे बेटा तू आ जा, उसका धक्के मारे शराब पी के, पिता फिर भी दूर नहीं हो सकता उससे, तो ऐसे कबीर साहब कहते हैं ये मेरी आत्मा मैं इनसे दूर क्यों करो जाऊं, ये गलती से फंसता गई इस काल के जाल में। तो क्या बताते हैं कि गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, गरीब दास ढूंढत फिरू अपने हीरे माणिक लाल, गोता मारू स्वर्ग में ढूंढता फिरू कदे स्वर्ग में, कभी पाताल में जाता हूं उनको नरक से निकलवा के ले आऊं, कभी पृथ्वी पर आता हूं अपने हीरे मोती लाल, ये लाल है परमात्मा के जब उसकी शरण में आ गए, कहते इन्हें ढूंढता हंडू काल के जाल से निकाल के, इनको सुख दो मांजू दो, इनको प्यार देता हूं और इनको, क्योंकि मुझे इन पर दया आती है। ऐसे आठ पैर तक ये चर्चा चलती रही और जिनकी बुद्धि ठिकाने थी उनने नाम ले लिए, उनका बेड़ा पार हुआ। इस सत्संग आठ पैर की गोष्ठी सुनकर लाखों की संख्या में तो उपदेश लिया उन पारी आत्माओं ने जो भंडारा खाना आई थी, परमात्मा ने एक तीर्थ दो शिकार कर दिए, अपनी समर्थता दिखा दी और अपनी प्यारी आत्माओं को आठ पैर सत्संग सुना दिया बैठ कर दो डबल रोल करके, और जो शरण माने थे वो लाखों की संख्या उन्होंने उपदेश भी ले लिए। अब जब चलने लगा भंडारा तीसरे दिन संपूर्ण हुआ, सब माल जो सभी टेंट टूंट था सब बैलों के ऊपर लाद दिया, और हर बैल के साथ एक दो बैल के साथ बंजारे भी साथ में एक एक और भी थे व्यक्ति जो भंडारा खिलाने वाले थे, सब सारा काम करवाने वाले थे, और वो लाद कर सारे टेंट को और बंजारे और बैल चल पड़े। केशव और कबीर सिकंदर लोधी कुछ व्यक्ति वहां खड़े थे। तो शेख तकी क्या कहता है, शेख तकी कहता है नो बोला इसे इसे भंडारे हम लाख कर दिया, ये दिया है इसे ने क्या भंडारा करा, ये तो टूट पुट पूंजिया काम करा, नो कति करड़ा हो रहा। और वहां और भक्त ने कह रहे जी कमाल कर दिया इसे भंडारा, ऐसा महान। तो यहां परमात्मा कभी गरीबदास जी कहते हैं अपने परमात्मा की महिमा, क्या बताते हैं कि कोई तो कहे यज जोनार करी है, यज जग जोनार क्या होती है, जैसे बड़ी खुशी में को लड़के का ब्याह हो और उसमें थोड़ा खुले हाथ से खर्चा करा करे और एक या लड़का हो जा खुशी हो जा उस लड़के को उपलक्ष में जो दान धर्म किया जाता है नहीं? उसको जोनार बोले। और एक होता महुछा, महुछा क्या होता है, जैसे कोई कह दे वैत्रे पिता का जो है ना तेरा बाबू मर गया इसका कि मैं तो करना ही पड़ेगा, वो मजबूरी में करवाया जाता है वो काज, जैसे वो पेट भर लोग कराया करते थे तो उसने वो बेचारा ने काम चलाओ सा कराया करेगा, चल पिता लाना डिगाना है ना मानता तो यो कार्य करवाने वाला गुरुजी, तो उसको तो ऐसे करते हैं काम चलाओ सा, तो उसको महोछा कहते हैं महोछा। अब गरीबदास जी कहते कोई कहे जग जोनार करी है कोई कहे महोछा, बड़े बड़ाई कराया करे भाई गाली कर दे ओछा। क्या कहते हैं कि नीच आत्मा तो कह रही थी कि इसमें इसे हम सो करते हैं महोछा सा किया है, और जो महान आत्मा है जो स्वयं महान होती है वो दूसरे की बड़ाई किया करते हैं, बड़े बड़ाई करते हैं भाई, कोई कहे जग जोनार करी हो ठाठूं ठाठ कर दिए और कोई कहे महोछा बड़े बड़ाई करा करेंगे गाड़ी काट दे ओछा। तो उधर से क्या होता है कि कबीर साहब इतने में कबीर और केशव वहां खड़े हैं, कबीर साहब और केशव रूप दूसरा उनका वहां खड़े हैं, सिकंदर लोधी खड़ा है, सैनिक खड़े हैं, हजारों आदमी दर्शक खड़े। इतने में क्या हुआ कि गंगा के पार जाना था, वो गंगा के अंदर से निकलना था, उनके उन्होंने उन बंजारों ने और बैलों ने, और गंगा चला फुल समीम पर कति ऊपर ऊपर का लहर जुमानु फुल पटड़ी भरी थी, और फिर देखते ही देखते क्या करे जैसे पानी जैसे एक एक फुट रह जाता है ऐसा जल हो गया जमीन, बिल्कुल गंगा उतर गई पानी, नीचे लहर चली गई। और जब वो सारे बैल और बंजारे निकल गए ना उसके मां के, उसी स्पीड तो फिर फल होगी, और ये सामने सिकंदर लोधी देखे और वहां दुनिया देखे कि यूं क्यों हो गया, एकदम ये जमुना उतर गंगा एकदम नीचे को गई, ये तो डटे तो ना डटे, और वो पार हो लिए। अब थोड़ी सी देर के बाद 5 मिनट के बाद फिर दृष्टि देखी गंगा के पार, ना वहां बंजारे देखे ना बैल दिखाई दिए, 9 लाख बैल, 9 लाख बैल अगर यहां लाइन ला देता रोहतक से लेकर यहां तक 2 घंटा की देख लो आप खड़े खड़े रोहतक से, क्यों तो पार जाकर तो वैसे थोड़ा बहुत ओझल हो जाने, तो 2 लाख बैल थोड़े नहीं होते। और 5 मिनट के बाद देखे ना बैल थे ना बंजारे वहां पर खड़े थे, तो जब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे मालिक वो कहां गए बंजारे और बैल, कबीर साहब बोले जहां से आए थे वहां गए, ये यहां का माल नहीं था, ये तो कंगाल लोग, ये काल का लोग तो कंगाल, ये मेरा हाथ जोड़ के वहां से अपने मेरा ध्यान लगा करके मेरा तप करके और मैं इसको टुकड़ा देता हूं, जब ये 21 ब्रह्मांड चला रहा है, हम तो अपना सतलोक से लेकर आए थे सारा माल और गए वहां पर जाके मेरे लाल थे वहां पहुंच गई आत्माएं। इतने में क्या होता है कि केशव रूप जो का नो केशव वाला रूप कबीर साहब के अंदर समा जाता है, अकेले कबीर साहब रह जाते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब यहां परमात्मा क्या कहते हैं कि इतना विश्वास रखो भाई, जैसे अपना उदाहरण दिया कि मेरे 9-18 लाख अतिथि आगे थे, वो अतिथि ना भूखा जावे, कहते अगर कभी ऐसी अतिथि भी आगे तो तेरे सामने खड़ा पाऊंगा मैं, ऐसे ही सोचल सिद्धर करके, तो चिंता मत करना, इस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना और फिर देखना आपके चारों तरफ से विश्वास दृढ़ कर देगा परमात्मा, पग पग पर आपकी रक्षा करेगा। लेकिन करेगा किसकी, जब आप पति भर्ता पद पर आ जाओगे। पति भर्ता पद का क्या तात्पर्य होता है कि आपने एक मालिक के सिवा दूसरे ने सपने में भी नहीं सोचा है, चाहे कोई आपके सामने कोई नो कह दे ना झाड़ा लुआ ले तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, वह कति नहीं लुआ हमारा मरो चाहे जीवे, और फिर देखिए इस परमात्मा के ठाठ इन झाड़ियां तो कोई लाभ होया करे। तो उस जो पतिव्रता पग पद पर हम आ जाएंगे परमात्मा आपके बिना हमारा कोई नहीं, मरेंगे तो तेरे चरणों में और जीवेंगे दाता तेरे तेरी याद में, तो उनके लिए फिर देखना कितना सुख देता है कि जो जो पतिव्रता जो मी पर जो जो धर है पावे
समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। ओए ओए। वो पति भरता यानी वो ऐसा हंस उस परमेश्वर पर आश्रित और जब चलता अपने जीवन के सफर पे के कोई कर्म रूपी कांटा ना लग जा मेरे बच्चे के, कहते वो समर्थ आज्ञा उन कांटे ने कर्म रूपी कांटों को झाड़ू से तेरे आगे आगे से करता चलता है। पति भरता जमी पर जो जो धर है पाओ और समृद्ध झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। इतनी ख्यास रखेगा, इतनी आपकी प्रोटेक्शन करेगा परमात्मा, जब इसके ऊपर आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा। बोलो सतगुरु देव की जय।
विनती करूं धरूं चरण पर शीशे, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कूटा तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोता जाम, तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं जो देव सो खाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी और, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन को, अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बहर पिता को लाज, मैं अपराधी जन्म का नकसक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सवार। बंदे तो कर बंदगी जय जावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार, मानुष जन्म पाक नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो तजविसी और रस चोज, बार बार ना पाओगे ये मानुष जन्म की मौज। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कहानी।
परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहेब सारी सृष्टि के रचन हर कुल मालिक की असीम कृपा से ये बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस के ऊपर ये तीन दिन का शुभ पर्व शुभ समागम उनकी रजा से संपन्न हुआ शांति पूर्वक, और कितनी भक्त आत्माओं ने आके इसका लाभ उठाया। इस कलियुग के अंदर प्रथम तो ये प्राणी परमात्मा को चाहता नहीं, क्योंकि इसको भौतिक सुख जैसे घर में टीवी हो गया, फ्रिज हो गए, कूलर लगा लिए, पंखे चले, कोठियां बना ली और बढ़िया वस्त्र हो गए, कार होगी, मोटरसाइकिलें होगी, तो अब इस नादान प्राणी ने यह सोच लिया कि तू अब बिल्कुल सुखी है। सत्संग की कमी से, सत्संग के अभाव से इस प्राणी को, इस जीवात्मा को यह ज्ञान नहीं होता कि वास्तविक कार्य मानुष जीवन का क्या था। और जब ये सत्संग में आता है तो इसे ज्ञान होता है कि आप तो अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हो। जैसे पहले हम छोटे छोटे से थे, जब सुना करते थे, बूढ़े आपस में बैठ कर बतलाते थे, कुशल मंगल पूछने के उपरांत क्या बताते थे, भाई मौज होगी मेरी, तब जीवन सफल हो गया मेरा, दो लड़के हैं, चार लड़की हैं, भाई अच्छे सबके संतान दे दी भगवान ने, लड़के लड़कियां, पोते पोती हो गए, देवते देवती होगी। और फिर ओके की घूट मार कर ने कहा, भाई मौज बस मेरा तो जीवन सफल हो गया, भगवान बेशक था दे। अब संत दृष्टि से देखें, ज्ञान की दृष्टि से देखें तो उस ये सफल नहीं हुआ, ये तो असफल हो गया तेरा, ये तो व्यर्थ हो गया। सफल कहाँ हुआ? सफल जब होता तुम प्रभु के चरणों में आते, डट कर भक्ति करते, दो पैसे पुण्य पर लगाते। अब वो लगाए नहीं, शुभ कर्म किए नहीं, भगवान भजा नहीं, तो पिछले जन्म जन्म की जो आपके शुभ संस्कार थे या जैसे भी थे उनको यहाँ पर भोग लिया। अच्छे पुण्य थे तो अच्छी संतान होगी, पोता पोती होगी, कार कोठी होगी, ये तेरी पिछली ही मलाई थी, पिछले ही संसार संस्कार थे तेरे जन्म जन्म के। अब जैसे कोई ये सोचे भी मैंने मेहनत की जिसके कारण मेरा कोठी होगी, कार होगी, हैं अच्छी मेरी कई दुकान बनगी, अगर मेहनत ना करता तो कहां से होता। ये भी मेहनत तो परमात्मा आप पर करवा ले है, जीव के बस का नहीं, उसने जो करवाना है, और वो करवाने हमारे संस्कारों ने वो पहले फीड कर रखे, हमारे अंदर जमा कर रखे, उसके आधार पर ये प्राणी आप पर भ्रमता भटकता फिरता रहता है, जीव के बस का कति नहीं। ये केवल आपको हमें अपने पिछले जन्म के संस्कार मिले हैं, और जो हमारे पुण्य थे उनके आधार पर हम सुखी नजर आए। जब पाप आए, पापों का दौर चला तो हमारे ऊपर फिर कहर टूट गया, उन्हें दुखों का कोई समाधान नहीं हुआ। अब जैसे हमारा स्वाभाविक इच्छा है हर एक इंसान की कि मेरे पास भी कार हो, मोटरसाइकिल हो, बढ़िया कोठी हो, कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। और मेहनत की बात रही, मेहनत मजदूर सुबह से लेकर शाम तक टोकरी ढोए, कसी का काम करे, जमींदार सुबह से लेकर शाम तक, रात का बेरा ना दिन का पता नहीं, और इतनी मेहनत करे और उसके पास मनमाने कोई झोंपड़ी भी ना डले, कोई मकान भी नहीं बन सकता, बेचारे पर सारा जीवन बीत जाए, क्योंकि उसके भाग में पिछले पुण्य नहीं है, और जिसके कारण वो मेहनत भी कर रहा फिर भी व्यर्थ हो रही है। और एक दुकानदार है, मनमाने शाम ने 2000 की इनकम करके ले जाता है, एक अधिकारी है हर महीने वो 10000 रुपये लेता है, और फली फोड़ता नहीं, थोड़ा सा अपना बैठा रहता है, कोई मेहनत व काला काम भी को नहीं। और ऐसे फैक्ट्री का मालिक है, मनमाने 2 लाख रुपए रोजाना की कमाई है उसकी, अर्थात तो बैठा रहता है। तो ये उसके पिछले कर्म संस्कारों ने उसका जहां भी जुगाड़ जोड़ना था वो जोड़ दिया, उसको वो देना है मालिक ने जो उसके भाग में है, उससे कम बत्ती प्राणी नहीं प्राप्त कर सकता। अब जैसे दूसरे समझिए कि हर इंसान की शादी होती है, हर बच्चे की पहली तमन्ना हो है होती है कि परमात्मा लड़का हो जा, स्वाभाविक होता है ये, कुछ ऐसी हमारे अंदर एक भरी हुई है एक प्रेरणा, हम लड़की के बजाय लड़के को ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि संत दृष्टि से ये भी गलत है, हमने लड़के और लड़की में कति फर्क नहीं चाहिए। परमात्मा ने लड़की दे दी बहुत अच्छी बात है, अपने पाले पोसे उन्हें कामयाब कर, लेकिन भक्ति पर जरूर लगा दे। अब लेकिन हमारी जो आस्था आम व्यक्ति की धारणा ये होती है कि लड़का हो, और लड़का होता नहीं, लड़की हो जाती है पहली, फिर इच्छा होती है भगवान दूसरी, तो लड़की जरूर हो, लड़का जरूर हो, मालिक अवश्य लड़का हो, और वो भी लड़की हो जाती है, फिर आस्था रहती है कि तीसरा तो लड़का होए हो परमात्मा, और वो भी लड़की होगी। अब ये ना तो हमारा सोचा हुआ, ना हमारा चाहा हुआ, जो कर्म जो करना था परमात्मा ने संस्कार आपको दे दिया। तो अब ये क्या, इससे क्या निष्कर्ष निकालना हमने कि जो भी सफल मान रहे हैं अपने जीवन में कि मेरा बेटा बेटी होगी, कार कोठी होगी, पोते पोती होगी, तो मेरा जीवन सफल हो गया, अगर वो भक्ति नहीं करके गया तो जीवन खो दिया उसने, तो बर्बाद कर दिया अनमोल जीवन को जिसकी कोई कीमत नहीं। एक श्वास की कीमत इतनी है इस मनुष्य जीवन की कि अगर इससे हम ये सत भक्ति करें तो एक श्वास की कीमत 3 लोक तक पासिंग रख दे और 14 लोक चढ़ा दे एक पालड़े में, ये एक श्वास के सिमरन का कीमत उस पालड़े में रखे हुए 14 लोकों से भी ज्यादा है। और ना बिरा कितने सांस खो दिए उसने पूरे जीवन के, तो वो तो कंगाल हो गया, फिर 84 में पशु बनेगा, नरक में डाला जाएगा। ना बेटा साथ चले, ना बेटी साथ चले, ना कोठी साथ चले, ना कार साथ चले। और वो जो साथ ले जाने वाली वस्तु थी उसका उसने ज्ञान नहीं हुआ बेचारे ने, क्योंकि वो सत्संग का अभाव रहा। इसलिए सत्संग के अंदर आना बहुत जरूरी होता है। तो कहने का भाव ये कि पहले तो कोई भक्ति करके राजी ना, और करते हैं जिनकी आस्था है विचारों की, पिछले पुण्य कर्म है, उनको रास्ता मिल नहीं रहा और वो मेहनत भी करते हैं। कोई कह देता वैष्णो देवी पर जाओ, वैष्णो देवी पर जाते हैं बेचारे 20 किलोमीटर तक पैदल चढ़े। कोई कहता अमरनाथ पर जाओ तो अमरनाथ पर भी चले जाते हैं, चाहे मरे चाहे जीव, इतने भयंकर रास्ते से गुजरते भी। कोई कहता है कि गोवर्धन की चक्कर लगा कर आओ गिरिराज के, वहां भी बेचारे ये चक्कर लगाते रहते प्रभु की तलाश में। लेकिन ये नादान संतों ने हमें वहां बर्मा भटका दिया जहां पर जिस कुएं में पानी नहीं, और हम प्यासे हैं, प्यास के लिए तड़पते फिरते हैं। ये कोई संकेत इधर कर देता है, कोई पूर्व में, कोई पश्चिम में, कोई कहीं जगह, लेकिन जहां कुआ है वो नहीं पहुंचा पा रहे। उनको स्वयं मालूम नहीं उन मार्गदर्शकों ने कि वो कुआ है कहां और कैसा होता है। अब एक नहीं, एक ना भूला, दो ना भूली, भूली सब संसारी, ये सारे संसार का भूल गिर दिस काल भगवान ने। ये महात्मा लोग जो संत वर्तमान के हैं, ये अपनी तरफ से तो ये सोचकर प्रचार कर रहे हैं कि हम ठीक बता रहे हैं, वो अपनी सोच से भी बिल्कुल सत मानकर लगे हुए हैं, बता रहे हैं कि हम जो मार्गदर्शन करें वो बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने ये देखना चाहिए तुमने सही किस बेस पर माना, इसको कोई आधार बताओ इसका, कोई ये कैसे सत्य है। तो निराधार वस्तु सत मानकर उसका प्रचार कर देना, आप भी गुमराह औरों को भी नरक में डाल रहे हैं। तो हमने सबसे पहले अपने शास्त्रों को बेस बनाना पड़ेगा, ये संविधान है परमात्मा का। अब एकाद भक्त का जैसे आवेश मां का प्रश्न पत्र आया कि क्या सभी आपने जो पहले आस्था चैनल पर ये 5 महीने चला था, 4.5 महीने, तो एकाद पत्र ऐसा भी आया जिसने ये कहा कि जी आप तो सभी को जो है ना यानी सभी का मार्ग गलत बता सिद्ध कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ही सब कुछ जानते हो और कोई कुछ नहीं जानता, ये बात अच्छी नहीं लगी आपकी। या किसी को किसी के पास भी मार्ग नहीं है क्या, ये भक्ति का या सत ज्ञान नहीं है या सत मंत्र नहीं है। अब कहने का भाव ये है, वो भी ठीक अपने स्थान पर बेचारा कि वो देखे जहां लाखों संत और हजारों की संख्या में ये साधु घर घर में गांव गांव में बताने वाले शहर शहर में, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है मन में ये आ जाना कि या ये सारे इन सबको ज्ञान नहीं क्या, ये कैसे हो सकता है। ये ऐसे हो सकता है जैसे अपना संविधान है गवर्नमेंट का, हिंदुस्तान का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसमें धाराएं लिखी हुई है, उसमें सब विवरण दिया हुआ है कि इस प्रकार का कोई अपराध है तो उसमें ये धारा लगेगी जिसका उसको फिर उसका आगे उसकी पुनिशमेंट लिखी है कि इसमें ये पुनिशमेंट होगी, इतना जुर्माना होगा, इसमें ऐसा ऐसा होगा, सब कुछ वर्णन है उसमें। और मान लीजिए 5 वकील 5 एडवोकेट आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि इस जो एक जुर्म के ऊपर उस पर धारा लगाना चाहते हैं, अपनी सोचते हैं। एक कहता है इस पे 406 लगेगी, दूसरा कहता है 307 लगेगी, कोई कहे 806 लगेगी, कोई कहे 212 लगेगी। अब 500 की डिस्कशन है, उनमें सब में न्यारी न्यारी जो है ना भिन्नता है अपने अपने विचारों की। तो अब इसका फैसला कौन करेगा, इसका फैसला कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, वो हमारा संविधान कर देगा कि उसमें जो उस वैरायटी का उस प्रकार का जो जुर्म है वो देखा जाएगा, फिर उसमें जो धारा होगी वही लगेगी। तो उनमें हो सके वो उनमें से या तो एक ठीक होगा, 500 तो ठीक हो ही नहीं सकते क्योंकि उनकी धाराएं न्यारी न्यारी है, नंबर अलग है बता रहे हैं। उनमें से 500 में से एक ठीक होगा, वो 500 ठीक नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। और हो सके 500 भी गलत हो जाए अगर उसमें संविधान में पांचों की ही वो धारा नहीं मिलती है। तो अब हमारे अपने जो भक्ति मार्ग का संविधान क्या है, ये वेद है। भक्ति मार्ग का संविधान क्या है, पवित्र विचारों वेद, पवित्र गीता जी। ये तो ब्रह्म साधना तक के ये कॉन्स्टिट्यूशन है, परमात्मा का नियम और उसके पाने की विधि, उसके जो उसे होने वाली उपलब्धि और उसके मंत्र कैसे करने हैं वो सब लिखे। और उसमें ये भी आगे और भी लिखा है कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में अगर तुमने भक्ति करनी है तो किसी संत न ढूंढ ले। उसके बारे में वो कौन संत है, कैसा संत चाहिए, वो भी गीता जी के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में लिख दिया कि जो सारे ब्रह्मांडों के नारे नारे वर्णन बता दे, पूर्ण ब्रह्म कौन है, ब्रह्म कौन है और ये परब्रह्म कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, ये जो बताने वाला मिल जाए तो वो तत्वदर्शी संत समझना, ये भी उसमें लिखा है। और यही पवित्र बाइबल में, यही पवित्र कुरान शरीफ में हजरत मोहम्मद जिससे मुसलमान धर्म चला, वो खुद कहते हैं मोहम्मद जी को, उनका खुदा उनका भगवान जिसको वो अल्लाह मानते हैं, हजरत मोहम्मद जी वो खुद कहता है कि वो कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, वो कबीर है पूर्ण परमात्मा। उसकी खबर किसी वाह खबर से पूछ देखो,